यह श्री रामकृष्ण कहा करते थे, तो मैंने यह कहा कि गीता में ये सभी रास्ते दिखाए गए हैं, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है। मनुष्य के भीतर में जितनी प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, उन समस्त प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया और इन प्रवृत्तियों के माध्यम से हम उस परम तत्व को कैसे पा सकते हैं, इसका निर्देशन भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे समक्ष करते हैं। तो ज्ञान, आधारभूत ज्ञान यह जीवन का लक्ष्य है और इस ज्ञान को पाने के लिए ये चार रास्ते हैं। एक रास्ता साधन ज्ञान, दूसरा रास्ता ध्यान योग, तीसरा रास्ता कर्म योग और चौथा रास्ता भक्ति योग। और ये चारों के चारों रास्ते अंत में उसी सिद्ध ज्ञान में जाकर के हमें उपनीत करा देते हैं, वस्तु की उपलब्धि करा देते हैं, आत्म साक्षात्कार करा देते हैं, ईश्वर का दर्शन करा देते हैं। आप किसी भी भाषा का प्रयोग करें, उस एक ही लक्ष्य के लिए मानो हमें जीवन का वह प्रयोजन प्राप्त हो जाता है जिसके लिए यह शरीर धारण हुआ है, उस लक्ष्य की परिपूर्णता साधित होती है। कल हमने कहा था कि ध्यान योग को सिद्ध करने के लिए कर्म और भक्ति किस प्रकार से सहायक बनते हैं। हमने संकेत किया था मन बड़ा चंचल है, उसके भीतर में मल भरा हुआ है और इसीलिए वह शांत बैठ नहीं पाता है। इस मल को दूर करने के लिए कर्मयोग बड़ा सशक्त साधन है। कर्म को जब हम योग की दृष्टि से करते हैं, जब कर्म को कर्मयोग बना लेते हैं, तो मन का मल कर्मयोग के माध्यम से बहुत तेजी से धुलता है। और ये सब उपाय हैं, भक्ति भी बहुत सक्षम उपाय है मन के मल को धोने का, पर कर्मयोग यदि ठीक ढंग से किया जाए तो हमारे मन के मल को अधिक अच्छी तरह साफ कर देता है। भक्ति जीवन में मानो स्थायित्व लाती है, मन को एकाग्र करने के लिए हमें पाथे प्रदान करती है। जैसे ज्ञान के क्षेत्र में हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन में, हम अपने स्वरूप से अपने को भिन्न महसूस क्यों करते हैं? कारण है आवरण, मल और विक्षेप। ये तीन शब्द हैं जिनका प्रयोग वेदांत के क्षेत्र में किया जाता है। आवरण, मोह के कारण आवरण पड़ गया, मल आ गया और उस मल से विक्षेप पैदा होता है। जैसे सर्प और रज्जू का उदाहरण दिया जाता है, एक मोह का आवरण आ गया, इसलिए रस्सी रस्सी के रूप में दिखाई नहीं देती है। तो किस रूप में दिखाई देती है? वह सांप के रूप में दिखाई देती है। तो रस्सी जो रस्सी के रूप में नहीं दिखती है वह है आवरण, और जो सांप के रूप में दिखती है वह है मल। और इस मल के कारण विक्षेप क्या होता है? मैं डर करके भागता हूं, चिल्लाता हूं, रोशनी ले आओ, लाठी ले आओ, इसको कहते हैं विक्षेप। एक बार फिर से इसको मैं दोहरा देता हूं, रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखी, अंधेरा था, उतनी रोशनी नहीं थी, रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखी, इसको कहते हैं कि रस्सी के ज्ञान पर आवरण पड़ गया। रस्सी सर्प के रूप में दिखाई देती है, इसको कहते हैं मल। और सांप के रूप में दिखने के कारण हमारे भीतर नाना प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं भय की, उसको कहते हैं विक्षेप। तो यह जो तीन शब्द हैं, तो इन तीन शब्दों से जो हेतु, जो अर्थ ध्वनित होता है, इसी कारण हम अपने स्वरूप को ठीक पहचान नहीं पाते हैं। तो यह कहा जाता है कि जो कर्मयोग है, कर्मयोग से मल दूर होता है, भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है, और ज्ञान योग के माध्यम से आवरण नष्ट होता है। तो ये तीनों मिलकर के मानो मल, आवरण और विक्षेप को दूर करते हैं, और हमारा जो अपना आप है, हमारा जो अपना स्वरूप है, वह प्रकाशित होता है। तो कल हम कह रहे थे कि कैसे ध्यान योग को सिद्ध करने के लिए कर्म और भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। कर्म की बात भी आपके समक्ष रखी कि कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाए। कर्मयोग का मतलब यह है कि हमारा कर्म, जो भी स्वभाव प्राप्त कर्म है, वह भगवान की पूजा बन जाता है। इसे हम कर्मयोग कहते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है, या युज धातु से व्युत्पन्न माना जाता है। यदि कहें कि वह युज धातु से व्युत्पन्न है, तो उसका मतलब होता है जोड़ना। और यदि युज धातु से निकला हुआ माने, तो उसका तात्पर्य होता है समाहित हो जाना। पतंजलि भाष्य करते हुए कहते हैं योग शब्द पर, योग समाधि ही, योग समाधि की स्थिति है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर हमारा मन समाहित हो गया, वह योग की स्थिति, अथवा जहां पर जुड़ गए माने कौन किससे जुड़ गया, तो कहते हैं जीवात्मा जिससे परमात्मा से जुड़ जाए, वह योग है। जिससे जीव ईश्वर के साथ जुड़ जाए, उसको कहते हैं योग। तो हम कल यह कह रहे थे कि अपने प्रत्येक कर्म को योग बना सकते हैं, भगवान की पूजा बना सकते हैं, यज्ञ बना सकते हैं। अपने कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण तो यह कहते हैं, अर्जुन तेरा यह जो युद्ध रूपी कर्म है, जिसको तू घोर समझता है, तेरा यह युद्ध रूपी घोर कर्म भी भगवान की पूजा बन सकता है, यज्ञ बन सकता है। और वे इस पर जोर देते हैं कि अर्जुन अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ बना ले। यदि युद्ध जैसा घोर कर्म भी यज्ञ बन सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य जो भी क्रिया करेगा, उस क्रिया को हम ईश्वर के साथ संयुक्त कर सकते हैं। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए सब काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि उनका स्मरण किया जा सकता है हर स्थिति में। जहां मैं युद्ध कर रहा हूं, उस युद्ध में भी भगवान का स्मरण बना रह सकता है। यह कर्म योग की साधना है। तो हर क्रिया को ईश्वर के साथ जोड़ा जा सकता है, और जिस समय हम हर क्रिया को जोड़ देते हैं, तो यह कहा गया कि ऐसा जो योगी है, हत्वा से ईमान लोकान न हन्यते न निबध्यते, यदि वह सारे लोगों की भी हत्या करे, पर न तो वह हत्या करता है न बंधन में फंसता है। मानो उसकी बुद्धि ईश्वर में ही जाकर के निश्चित हो जाती है। यह कर्मयोग की साधना है। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है, क्या हम किसी भी कर्म को भगवान की पूजा बना सकते हैं? हम चोरी करें चोरी भी क्या भगवान की पूजा बन सकती है? हम डाका डालें, दुष्कर्म करें और भगवान का स्मरण करें और कहें कि प्रभो यह दुष्कर्म मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, तो क्या उससे दुष्कर्म भगवान की पूजा बन सकता है? यह प्रश्न हमारे मन में आता है, क्योंकि गीता कहती है कि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसे यज्ञ बनाया जा सकता है, और गीता ने तो यहां तक कह दिया, पश्यन शिण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहन उन्मिशन निमिशन नपि। इस श्लोक में शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन किया गया, पश्यन देखना, शिण्वन सुनना, स्पृशन छूना, जिघ्रन सूंघना, अश्नन खाना। तो मानो खाना, चलना, फिरना, सोना, यहां तक कि आंखों की पलकों का गिरना और उठना, यह भी भगवान की पूजा बन सकता है, ऐसा कहा गया। तो स्वाभाविक ही मन में प्रश्न उठता है, यदि मैं चोरी करूं और मन में यह भाव लाऊं यह चौर्य कर्म तुम्हें समर्पित है प्रभो, तो क्या मैं चोरी के कर्म से मुक्त हो सकता हूं? मैंने डाका डाला तो डाका रूपी कर्म भी क्या भगवान की पूजा बन सकता है? तो यहां पर गीता कहती है नहीं, कर्म ही केवल भगवान की पूजा बन सकता है। कर्म के दो अन्य रूप हैं, ये दो अन्य रूप भगवान की पूजा नहीं बन सकते। ये कौन से दो रूप हैं? एक को कहते हैं विकर्म और दूसरे को कहते हैं अकर्म। गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। देखो भाई, कर्म के ये तीन रूप हैं, कर्म को जानो, विकर्म को जानो, अकर्म को जानो। विकर्म क्या है? यह विपरीत कर्म, शास्त्र निंदित कर्म, अशुभ कर्म, बुरा कर्म। और अकर्म क्या है? जिसको हम कहेंगे आलस्य, प्रमाद, जड़ता से निष्पन्न। अकर्म माने कर्महीनता। कर्महीनता का मतलब मैं बहुत आलसी हूं, मुझमें बहुत प्रमाद है, बड़ी जड़ता है, तो इस स्थिति को अकर्म कहा गया। और कर्म क्या है? कर्म कहते हैं स्वभाव प्राप्त कर्म को, सहज कर्म को। जिस कर्म में मैं लगा हूं वह सहज कर्म कहलाता है। मैं दुकानदारी करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं किसी धंधे से लगा हुआ हूं, मैं घर का काम करता हूं, तो यह मानो मेरे लिए स्वभाव प्राप्त कर्म, किसानी का कर्म, खेती का कर्म। तो जो जिसके लिए सहज है, जो कर्म उसे सहज रूप से मिला है, इसको कहते हैं कर्म। तो यह कहा गया कि कर्म के जो दो रूप हैं, विकर्म और अकर्म, इन दोनों का त्याग करो, और जो कर्म है उसको तुम भगवत समर्पित बुद्धि से करो। तो इससे क्या होगा? यह कर्म कर्मयोग बन जाएगा। यह कर्मयोग की शिक्षा है। जैसे उदाहरण लें, एक कपड़े का व्यापारी, उसके लिए कर्म क्या है? उसके लिए कर्म है अपना धंधा करना, कपड़े का व्यापार करना। कपड़े का व्यापार करता है, इसमें विकर्म क्या है? कि मैंने 6 मीटर कपड़ा मांगा और वह मुझे 6.25 मीटर दे देता है। यह जो चोरी करता है इसको हम कहेंगे यह उसमें का विकर्म है। अकर्म क्या है? आप कपड़े की दुकान में गए, कहा कि जरा जी जरा कपड़े दिखाइए, और उसने 2-3 प्रकार के कपड़े दिखाए, पहले तो उठता ही नहीं है। हां, कहा कि भाई जरा कपड़े तो दिखाओ, टेबल पे लात फैला करके पड़ा था, उठ करके आता है, कपड़े दिखाया, हम उससे कहते हैं जरा उधर का दिखाओ, तो कहता है जी देखने आए हो ना खरीदने आए हो। बहुत आलसी, काम करने में कोई उत्साह नहीं, यह अकर्म है। तो कहते हैं यह जो कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का व्यापार करते हुए वह भगवान को पाने की साधना कर सकता है। कैसे कर सकता है? अकर्म को दूर करे, विकर्म को दूर करे। विकर्म को दूर करे मतलब चोरी न करे, ऐसा कुछ काम न करे जिसको हम चोरी कहते हैं। आप गए ठीक ढंग से दे देता है, कहीं काट छांट नहीं। और अकर्म माने उत्साह है, पूरा उद्यम है काम करने में। आपने कहा भाई आपके पास ऐसा कोई कपड़ा है क्या? देखिए मैं खरीदने नहीं आया हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं। अजी मत खरीदिए, आप देख तो लीजिए। और 10 कपड़े कई थान ला करके खोल देता है। और हम कहते नहीं भाई, इतनी क्यों कोशिश कर रहे हैं आप, बेटा मेहनत कर रहे हैं, मैं तो अभी खरीद नहीं रहा हूं, मैं केवल पूछने आया हूं। क्या हो गया जी, जरा देख तो लीजिए, दुकान और देख लीजिए, बाजार में मोल भाव कर लीजिए, फिर आपको जब लगे कि मैं ठीक दे रहा हूं तो आके खरीदिए, देखिए जी, हमें तो खुशी है आपको दिखाने में। उद्यम है, बड़ा उद्यमी है, बड़ा पुरुषार्थी है। तो इसने अकर्म को दूर कर दिया अपने जीवन से। तो अकर्म और विकर्म, इन दोनों को हम दूर कर दें और कर्म करें, और कर्म को भगवत समर्पित बुद्धि से करें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मन के भीतर में ऐसी प्रार्थना, मन के भीतर में ऐसा बोध जगाने की चेष्टा कि प्रभु यह जो मैं कर्म कर रहा हूं तुम्हारी दी हुई शक्ति से, और इस कर्म का जो भी फल हो प्रभु तुम्हारे चरणों में मैं अर्पित करता हूं, तुम इस यंत्र को ठीक ढंग से चला लो, तुमने यह संसार का बोझा मेरे सिर पर रखा है तो इस बोझा को सहने की ताकत भी तुम ही देते हो। हर कर्म के पीछे प्रभु का स्मरण, यह भाव। तो यह जो भाव बना रहता है ईश्वर का स्मरण, कुछ भी मैं कर्म करता हूं मानो वहां पर मुझे स्मरण बना हुआ है ईश्वर का, तो वह मेरे कर्म को कर्मयोग बना देता है। तो यह कर्म को कर्मयोग बनाने की साधना है। जैसे एक शिक्षक है, तो क्या शिक्षक अपने शिक्षण कर्म के द्वारा भगवान को पा सकता है? पा सकता है। शिक्षण कर्म भी योग बन जाता है, भगवान की पूजा बन जाता है। कैसे बनता है? शिक्षण में जो विकर्म और अकर्म है उसको दूर कर दो। शिक्षण का विकर्म क्या है? यह जो पैसा लेकर के मैं पास कर देता हूं, पर्चा आउट कर देता हूं, यह है उसमें का विकर्म। अकर्म क्या है? जाता हूं क्लास में, अब बैठा रहता हूं कुर्सी पर, मेज पर पैर फैलाता हूं और किताब दिखा करके लड़कों से कहता हूं अरे इस पेज का है लिख लो तुम लोग, उत्साह ही नहीं है पढ़ाने में, यह उसमें का अकर्म है। पर यदि शिक्षक इस अकर्म को दूर करे और इस कर्म में डूब जाए, उसको आनंद मालूम पड़े और विकर्म को दूर रखे और इसके भीतर में भगवान का स्मरण करता हुआ चले, कहे कि प्रभु तेरी एक पूजा मैं तब करता हूं जब मैं पूजा घर में बैठता हूं, और यह जो मैं कर रहा हूं अध्यापन का कार्य यह भी तेरी पूजा है, यदि यह भाव मेरे भीतर में बना रहे तो यह शिक्षण का कर्म मेरे लिए भगवान की पूजा बन जाता है। तो कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि आपको कर्म में रस आना चाहिए। जो काम आप करते हैं उस काम में यदि आपने रस का अनुभव नहीं किया तो कर्मयोग आपसे दूर है, आपको उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। इसीलिए जो गीता का कर्मयोग का सिद्धांत है वह ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक से भिन्न है। एक तो सिद्धांत यह है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, मैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य करता हूं, भाई मेरा यह कर्तव्य है, मेरी यह ड्यूटी है, तो ड्यूटी का पालन करना चाहिए मुझे, इसलिए मैं एक काम करता हूं। गीता का कर्मयोग ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक नहीं है। गीता का कर्मयोग क्या है? जो कर्म मैं करता हूं उसमें पूरा उद्यम, पूरी चेष्टा, उसमें मुझे पूरा डूब जाना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम्, पूरी तरह से डूब करके उसमें मुझे रस लेना चाहिए उस कर्म के भीतर में। और कैसे मैं उससे बंधूंगा, कैसे नहीं, ईश्वर समर्पित बुद्धि के कारण। प्रभु यह तेरी पूजा, यह भी तेरी ही प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीति के लिए मैं यह कर रहा हूं। इस भाव को भले ही आज यांत्रिक हो या भाव मैकेनिकल हो, पर इसे बारंबार अपने भीतर लाने की चेष्टा करनी चाहिए कि प्रभु तुम्हारी प्रीति के लिए मैं यह कर्म करता हूं, ऐसा भाव। तो जब प्रीति आती है तब तो कर्म अपने आप होता है। जैसे मां का बच्चा बीमार है, अब मां बैठी है, रात भर बैठी है, जागती रहती है, मानो कितनी रात उसने बिल्कुल इसी प्रकार जाग करके बिता दिए। पर मां को क्या यह लगता है कि मैं ड्यूटी बजा रही हूं अपने लड़के के प्रति? उसमें क्या ड्यूटी बोध है? ड्यूटी बोध नर्स में रहेगा, उसे लगेगा कि 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है, और जो ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है वह छोड़ करके चली जाएगी। मां क्या ड्यूटी दे रही है? और मां को थकावट क्यों नहीं आती है? कितने रात उसने जागते हुए बिता दिए? क्योंकि प्यार है, प्यार के कारण वह बैठी है सिरहाने पर, वहीं बैठी है अपने बच्चे के पास, प्यार है, और इसीलिए वह कर्म बोझा नहीं मालूम पड़ता है। हमें कर्म बोझा तब मालूम पड़ता है जब हम उसे ड्यूटी के लिहाज से करते हैं, ऐसा सोच करके कि यह मेरी ड्यूटी है, तब कर्म बोझा हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग नामक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि यह ड्यूटी फॉर ड्यूटी से यह पश्चिमी भाव है, यह हमारा अपना भाव नहीं है। हमारा अपना भाव क्या है? यह कर्म, अरे यह तो प्रभु की प्रीति के लिए मैं करता हूं, मैं डूब जाता हूं उसमें, आनंद का अनुभव करता हूं। जैसे मैं भजन करते हुए आनंद का अनुभव करता हूं, वैसे ही कर्म करते हुए मैं आनंद का अनुभव करता हूं। भजन करते हुए आनंद लेना एक विधा, और कर्म करते हुए आनंद का अनुभव करना दूसरी विधा। मानो मैं कितनी विधाओं से उसी आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं, यह भाव मेरे भीतर होना चाहिए। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। तो कर्मयोग मुझे क्या सिखाता है? डूबो उसमें। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अब एक व्यक्ति है जो कर्तव्य बोध से पीड़ित है, अब उसे कुछ बोनस मिला, बाजार में गया, जाकर के कहता है अच्छे जी जरा साड़ी दिखाना। पत्नी ने कहा होगा बहुत दिन से तुमने एक साड़ी भी नहीं ला करके दी। बच्चों ने कहा कि बाबूजी बहुत दिन तो हो गए, बाबूजी ने कोई कपड़ा ला करके नहीं दिया, बोनस मिला है जरा दिखाओ तो जी। हाँ कितने की है? इतना। अरे ये तो बहुत महंगी है, और कुछ कम दाम की? ठीक है, उसने कुछ कम दाम की इधर उधर करके पैकेट बनवा लिया, कपड़े बनवा लिए, और वह जाता है और जाकर के पत्नी से कहता है लो मेरा सिर खा रही थी कितने दिन से, ले लो अपना। और वो पत्नी उसको खोल करके देखती है, कोई आनंद नहीं, कोई अच्छा तो है नहीं, वह तो ड्यूटी पूरी करने के लिए कपड़ा खरीद करके लाया है, तो उसमें तो रस है ही नहीं खरीदने वाले के मन में, वह तो ड्यूटी फर्ज पूरी करने के लिए। लो भाई, तो जिसके लिए किया गया उसका भी मन खट्टा, और जो कर रहा है उसका भी मन पहले से खट्टा, किसी को आनंद नहीं है। ठीक है, पत्नी भी एक तरफ फेंक देती है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसको बोनस मिला, कहता है कि वाह आज जाकर के मुन्ने की मां को साड़ी दूंगा, क्या खुश हो जाएगी, पता ही नहीं है। अच्छा जी जरा साड़ी दिखाओ। भाई जरा इससे कुछ अच्छी साड़ी नहीं है? और उसने देखा बढ़िया साड़ी है, खरीदा, मुन्ने के लिए खरीदा, और वह गया घर में। देखो यह तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, क्या लाए देखो तो सही, अजी तुमने क्या खर्च कर दिया, फिर मेरे लिए तुम कुछ ले आए, अरे देखो तो बोनस मिला है बोनस। और पत्नी खोल करके देखती है और मानो निहाल हो गई देख करके, माने जो दे रहा है उसको भी आनंद, और जिसको दिया जा रहा है उसको पा करके आनंद। यह है कर्म। जब कर्म जो करता है वह भी आनंद का अनुभव करे, जिसके प्रति कर्म किया जाता है वह भी आनंद का अनुभव करे, यह कर्म की साधना है। तो यहां पर जो गीता में कर्मयोग का सिद्धांत है वह कोई ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक नहीं है, वह है प्रीति अर्थ कर्म, भगवत प्रीति अर्थ कर्म। मानो इसमें आनंद, बच्चे का चेहरा मैंने देखा खुशी से फूल उठा है, मेरा अंतर कितना फूल जाता है। पत्नी का चेहरा देखता हूं कितना प्रफुल्लित हो गया, मैं गदगद हो जाता हूं। यह आनंद कर्म सबको आनंद दे, जिनके साथ मेरा कर्म संबंधित है उन सबको आनंद दिए, यह कर्मयोग का सिद्धांत। और यह कैसे आता है? गीता कहती है कि यह होता है साधना से, हम इसमें समर्थ होते हैं ऐसा करने में। तो यह यहां पर बताया गया यह कर्मयोग का सिद्धांत। और उसमें तात्विक बात क्या है कि कर्म में ईश्वर का स्मरण बना रहे। क्या हर समय स्मरण बना रहे? क्या ऐसा कि मैं जब भी काम कर रहा हूं तो भगवान का ध्यान करूं? ऐसा नहीं। कोई कह सकता है अच्छा जी, भगवान का ध्यान करने की बात कहते हैं, स्मरण करने की बात, इसका क्या मतलब है कि मैं हिसाब का काम कर रहा हूं तो हिसाब का काम करते हुए अगर मैं भगवान का ध्यान करूंगा तो हिसाब में गफलत नहीं हो जाएगी? मान लीजिए मैं साइकिल में जा रहा हूं और आप कहते हैं हर क्रिया में भगवान का ध्यान किया जा सकता है, आप उदाहरण देते हैं युद्ध रूपी घोर क्रिया में भी भगवान कृष्ण ने कहा तू मेरा स्मरण कर, अब मैं साइकिल में बैठा भगवान का स्मरण करूंगा तो टक्कर नहीं हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? तो हम पहले तो यह कहते हैं कि भाई किसने ऐसा तुमको कहा कि जब तुम साइकिल चलाओ तो आंखों को बंद कर लो और भगवान का ध्यान करते हुए चलाओ? ऐसा तो नहीं कहा गया कि तुम हिसाब करने बैठो तो आंखों को बंद करके तुम हिसाब करने लगे, ऐसा किसने कहा? इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्म को करने से पहले भगवान का स्मरण थोड़ी देर कर लिया। और फिर हम यह कहते हैं कि अच्छा जब तुम साइकिल पर बैठ करके जाते हो तो तुम्हारा सारा का सारा मन क्या साइकिल के चक्के की तरफ ही रहता है, दुनिया में नहीं भागता है? कहता हां भागता तो है। तो दुनिया में तुम्हारा मन भागता है और साइकिल तुम चला रहे हो तो टक्कर नहीं होती, और भगवान में तुम्हारा मन जाए ऐसा मैं कह रहा हूं और तुम कहते साइकिल चलाने से टक्कर हो जाएगी। बहुत विचित्र बात है कि दुनिया में मन घूमता है पर टक्कर नहीं होती, और भगवान में अगर मन को देने के लिए कहा जाए तो टक्कर हो जाएगी। हिसाब करने बैठता हूं तो मन क्या है, हिसाब में ही रहता है, दुनिया में घूमता है, पर हिसाब में गलती तो नहीं होती, पर भगवान में मन देने की बात कहने से कहता हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात। अरे बल्कि ईश्वर का चिंतन बना रहे तो हिसाब और बड़ी सूक्ष्मता के साथ होता है। जो काम हम 2 घंटे में करते हैं अगर ईश्वर के स्मरण का अभ्यास हो गया, मैं दावे से कहता हूं उस काम को आप 1 घंटे में कर सकते हैं, आपका मन इतना एकाग्र हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे हिमालय पर, अचानक उनको ठोकर लग गई, उन्होंने कहा प्रियतम इस क्षण मैं तुझे भूल गया था इसीलिए मुझे ठोकर लगी। भगवान को भूलने से ठोकर लगती है, भगवान का स्मरण करने से कोई ठोकर नहीं लगती। तो हम क्या कहते हैं भगवान का स्मरण करने का मतलब कोई भी कर्म हम शुरू करते हों प्रारंभ करते समय थोड़ा चिंतन कर लिया, कितनी देर? अरे आधा मिनट 30 सेकंड भगवान का स्मरण किया, प्रभु तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा से यह यंत्र कार्य करे, तुम जैसी इच्छा करो तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो बस, और उसके बाद मैं काम करना शुरू करता हूं। और जब थोड़ा सा अवकाश मन को मिला रख दी लेखनी मैंने, फिर प्रभु का स्मरण थोड़ा कर लिया, और जब काम समाप्त हो गया तो प्रभु का स्मरण कर लिया, सोते समय प्रभु का स्मरण कर लिया, सुबह मैं उठता हूं प्रभु का स्मरण कर लिया, कितना समय लगा? यदि कुल आप देखेंगे तो बहुत अधिक नहीं। हम मन को अभ्यास में लाने की चेष्टा करते हैं कि मन में यह अभ्यास पैदा हो जाए प्रभु के स्मरण करने का। तो प्रभु के स्मरण करने का अभ्यास इस प्रकार करने से एक प्रभु के स्मरण की अंतः प्रवाही सलीला भीतर ही भीतर बहती है। मानो हम काम कर रहे हैं पर मन का एक भाग मानो प्रभु में चला गया। श्री राम कृष्ण देव इसी को कहते हैं अपनी सहज सरल भाषा में, दुनिया का काम करो एक हाथ से भगवान के चरणों को पकड़े रखो, और जब दुनिया का काम खत्म हो जाए तो दूसरा हाथ भी भगवान के चरणों में लगा दो। इसका मतलब यही कि हम जब काम करते हो ठीक है, हमने अभ्यास किया प्रभु के स्मरण का, काम किया जब भी मन को अवकाश मिला। वैसे तो मन तो दुनिया में कहां कहां भागता है, तो यहां पर हम मन को भगवान में लाने की, भगवान में केंद्रित होने की चेष्टा करते हैं और मन इस प्रकार धीरे धीरे जब अभ्यास करना सीख जाता है तो हम देखते हैं हर समय भगवान के स्मरण की अंतः प्रवाही सलीला बनी रहती है और प्रभु का स्मरण हमें कभी भी किसी भी समय हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं एक महिला का जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है,